نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في قران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه ينفر فما الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه أصحابه وبارك وسلم أما بعد ہمارا پورا جسم پوری زندگی ایک ایک چیز کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے آنکھ بھی اس کا دیا ہوا دیا ہے ہاتھ بھی اس کی عنایت ہے جسم کا ایک ایک جز غور کریں آپ اس کا مالک کون ہے مالک مالک حقیقی ہے وہ اس کا مالک ہے ہمیں دیا گیا ہے اللہ نے ایک تخلیق کی شکل میں ساری عنایت ہمیں عطا فرمائی آنکھیں دیں ہاتھ دیا منہ دیا کان دیا ہاتھ دیے ٹانگیں دیں اور ایسے ترتیب سے اللہ پاک نے دیا کہ آپ نے اللہ نے فرمایا کہ احسن تقویم ہے یہ خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا چیز اللہ کی ہے مالک اللہ ہے استعمال ہم کرتے ہیں آنکھ ہم استعمال کر رہے ہیں دیا وہ اللہ کے ہاتھ ہم استعمال کرتے ہیں مالک اللہ ہے آپ ایک مکان کے مالک ہیں اور کوئی آپ کا مکان استعمال کرتا ہے مفت کرنے دیں گے آپ کبھی نہیں پیسے لیں گے اس سے اللہ پاک تو کسی چیز کا کوئی پیسہ نہیں لیتا کوئی کونسل ٹیکس ہے کبھی کسی فرشتے نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ بھائی آپ کا میٹر چلا ہے اتنا آنکھ کا آپ کی ٹانگوں کا اتنا میٹر چلا ہے آپ کی اجزاء جو ہیں وہ تو بہت استعمال ہوئے ہیں وہ میٹر لگا دیتا اللہ پاک آپ کو رکھ دیتا ہم پر کس پر اتنی محنت کریں اتنا ادا کریں سب چیز فری اللہ پاک نے کر دی اور ہر انسان کے لیے اس میں کوئی تشویش نہیں اللہ پاک نے رکھی کوئی مانے اس کو یا نہ مانے غیر ہو یا اپنا ہو اسی سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں پورا انسان فائدہ اٹھا رہا ہے اللہ کی اس دیویتی سے لیکن فرق ضرور ہونا چاہیے فرق ضرور ہو غیروں میں اور اپنوں میں اگر ہم اس کو یہی مان لیں کہ آنکھ صرف دیکھنے کے لیے اور کوئی اس کا کام نہیں ہاتھ صرف جو ہے کمائی کے لیے ہے یا دنیا مصروف مصروفیت کے لیے ہیں یا ٹانگیں ہمارے صرف دنیا کے کاموں کے لیے ہیں تو پھر فرق کیا رہا خیروں میں ہماروں میں فرق کیا رہا حقیقت ایسا نہیں ہے ایک ایک جز اللہ نے دیا اس کی بہت بڑی قیمت ہے اس کی ہاتھ کی صرف یہی قیمت نہیں کہ ہم پیسے کما لیں یا دنیا کما لیں یا روٹی کھا لیں یا کھانا کھا لیں یا پانی پی لیں اتنی چیز سستی نہیں ہے بہت قیمتی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے بہت قیمتی چیزیں خزانہ ہے بہت قیمتی چیز ہے ہم قدر نہیں کرتے اس کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے احمد میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ انسان گھر سے جب مسجد کی طرف چلتا ہے قدم بڑھاتا ہے رائٹ اور لیفٹ کرتا ہے نا दायां बायां पाँव तो दोनों स्थिर, मशीन की तरह अल्लाह ने मशीन लगाई, इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, तो फिर वो कदम नहीं रहते। जब सुबह से कर रहा था ना कदमों को इस्तेमाल, बाहर जा रहा था, अंदर जा रहा था, दुकानों पे रहा था, गोश्त ले रहा था, सब्जी ले रहा था, काम पे जा रहा था, सुबह से लेके शाम तक ये कदम इस्तेमाल हुए ना हमारे, इधर चले गए, उधर चले गए, इधर बात, इधर बात। जैसे ही वो अपने घर से मस्जिद की तरफ चला, उसकी हैसियत चेंज हो जाती है कदमों की। कदम वही है, जूता भी वही पहना है, वही कदम है, लेकिन अपने मसरफ में आया वो कदम। जैसे ही उस कदमों का मस्जिद की तरफ रुख हो गया, वो कदम मस्जिद तरफ चलने लगी, तो उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, बहुत डिफरेंट। वो कदम नहीं रहते, बल्कि फौरन अल्लाह की तरफ से दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, उन दोनों कदमों पर इंचार्ज बन जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी तहवील में ले लेते हैं उन कदमों को, और इतनी कीमत बढ़ जाती है उन कदमों की, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, कि वो ही कदम उसको पूछ नहीं रहता सुबह, इतनी कीमत हो जाती है कि फरिश्ते आसमान से उतरे, एक एक कदम का इंचार्ज, दूसरे कदम का इंचार्ज, हर कदम पर उनकी फाइलें खुल गईं। एक कदम उठाता है तो एक फरिश्ता नेकी लिखता है, दूसरा कदम उठाता है तो उसकी गुनाहों को माफ़ करता है। कदम तो वही है, कुछ सुबह आप गोश्त से ले रहे थे, फ़र्क क्या हुआ कि जब वो कदम अपने मसरफ पर आया, अपनी हकीकत पर आया, वो कदम तो सारे उठा रहे हैं, लेकिन फ़र्क देखें आप कि जिस वक्त तुम मस्जिद की तरफ चल पड़े, उनकी कीमत डिफरेंट, उनकी हैयत डिफरेंट, उनमें रोना नूरानी डिफरेंट, उनकी हैसियत मुख्तलिफ। फरिश्ते उन कदमों को देख रहे हैं, नाप रहे हैं, आसमानी फरिश्ते आ रहे हैं, बाकायदा रिपोर्ट लिखी जा रही है, हर कदम पे नेकी लिखी जा रही है। अब मस्जिद 2 मील है, 1 मील है, आप हिसाब लगा लें कि उसका क्या है, उन कदमों की क्या कीमत हो जाएगी, किस कदर गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, और कितनी नेकियाँ उसकी अमालनामे में लिखी जाएगी, उसको पता ही नहीं। सब उसने तो अपने रुख को चेंज किया अपने कदमों के, अभी भी चल मस्जिद की तरफ रहा है, लेकिन एहसास ये कि कदम वही कीमती के जिससे मैं दुकान पे पैसे कमाने गया, कदम वही कीमती के जिससे मैं दुनिया के ये काम मैंने किया, या कि ऑक्शन से मैंने ये चीज़ खरीद ली, अभी भी वैल्यू उसकी है। काश वो जानता कि इस कदम की वैल्यू कितनी जो मस्जिद की तरफ उठा रहा है। बस चीज़ समझ नहीं आती, जब हदीसों से समझ आती चीज़ है, वही कदम बदल गया, एकदम अंदर आ गया, अल्लाह घर में आ गया, रूटीन में अंदर आ गया, मस्जिद में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ी, नमाज ख़त्म हुई, वापसी सफ़र किया, फिर वही काम, वो एक आते में भी रहमत और जाते में भी रहमत, आते में भी कमाई, जाते में भी कमाई, खाली नहीं गया इसके कदम। वजह क्या कि उन कदमों का ताल्लुक किससे हो गया था, अल्लाह से हो गया था, अल्लाह के साथ वो कदम ताल्लुक पैदा कर चुके थे, तो उनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। 95% लोग जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं, रश करते हैं, भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इतफाक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में जब आप आए, अल्लाह को हमारी अदाएँ पसंद आई आने की नीयतों पर, मोहब्बतों पर, देखा तो एक मजलिस कायम होगी, दीनी नस्बत से कोई मजलिस वहाँ पे कायम होगी, या कोई मजलिस चल पड़ी दीन की, ऐसी मजलिस की जिसमें रूहानी और इल्मी तरक्की हो, उसको दीनी मजलिस कहते हैं, रूहानी भी तरक्की हो उसमें और इल्मी तौर पर भी तरक्की हो रही हो, ऐसी कोई मजलिस कायम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी आप आए, नमाज पढ़ी, एक मजलिस मिल गई आप, ये दीनी मजलिस है, इसमें इल्म भी है, अमल भी है, रूहानियत भी है, अल्लाह की तरफ से मजलिस कायम होगी, मजीद इनाम मिल गया। हम उनको चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर, क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ने बिठा दिया हमें थोड़ी देर। 95% जो है मस्जिद से निकल जाते हैं, उनका काम खत्म हो गया, नमाज पढ़ी चले गए। नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक और चीज़ को अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है, नेमत अल्लाह की, वक्त, फिर अपने जिस्म के तमाम अज़ा को अपने नफ्स के तहत किया और उस वक्त को अल्लाह के लिए सरफ कर दिया कि यार चलो आधा घंटा है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, ये वक्त भी अल्लाह ही को दे देते हैं, सारा वक्त हमने दुनिया को दिया है, अल्लाह ने एकदम उसकी कीमत लिख दी वक्त की। क्या वक्त दिया, आप बैठे हैं आके, कोई तकलीफ हो रही है, खाने का टाइम है, कोई पीने का टाइम है, कोई मुसीबत है, कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि एक थोड़ी देर के लिए आपने दुनिया से अपने आप को तर्क किया आधा घंटे के लिए, और वो वक्त किसको दे दिया आपने, अल्लाह को दे दिया। जब आपने अल्लाह को दे दिया तो अल्लाह ने उसके जवाब में क्या दिया, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طبرانی کی حدیث پیش کرتا ہوں حدیث کے ساتھ, کہ جب ایسا انسان کوئی ہو جائے کہ اتنا سا وقت, تھوڑا سا وقت دیکھیں, ہم تو اللہ کو دیا, دو قدم اللہ کو دیے انعام, یہ تھوڑا سا وقت اللہ کو دیا, اس مجلس میں بیٹھے, انعام کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص جاتا ہے تو پورے حج کا ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے, پورے حج کا ثواب. بہت گناہگار ہیں, برا حال ہے, اور دیکھیں قیمتیں کیسے لگتی ہیں انسان کی. ایک منٹ پیچھے سوچے تو آدمی کوئی نمازی نہیں ہوگا, کوئی گناہگار ہوگا, کوئی زانی ہوگا, کوئی شرابی ہوگا, کوئی کس حال میں ہوگا, کوئی کس حال میں ہوگا, کتنی نافرمانی میں ہوگا. لیکن جب وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, الحمدللہ. اور جب اس کا اعمال نامہ کھلے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حج کا ثواب کہاں سے آ گیا, میں نے تو حج کیا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا اتنا سا وقت جو تھا میری خاطر قربان کر دیا تھا, اس مجلس کو تو سمجھتا بھی نہیں تھا, مجلس کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اور تو بیٹھ گیا, میں نے تجھے بٹھا دیا, تو نے قدر کی اس وقت کی, اپنے پورے جسم کے اعضاء کو میری طرف منسوب کر دیا, میں نے تجھے حج کا ثواب دے دیا. سبحان اللہ. اور پھر سوچیں آپ, پھر اس مجلس کا ثواب, جس نوعیت کی مجلس ہوگی, جس رنگ کی مجلس ہوگی, اتنا ثواب. اللہ کے نزدیک جو مجالس ہیں وہ تو مختلف پرائے میں, مختلف درجوں پر ہیں, مختلف حیثیت پر ہیں. آؤ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ابھی یہی واقعہ ہوا ہے, آئے بھی ہیں, اس کا بھی ثواب ملا ہے, تھوڑی دیر رکے ہیں, اس کا بھی ثواب مل گیا, حج کا مل گیا. اب دیکھیں مجلس کا کیا ثواب ہے, اس مجلس کا ٹائٹل کیا ہے, اس مجلس کو ہم کیا کہتے ہیں, ذکر اللہ. اسی نیت سے بیٹھے ہیں نا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح ترمذی کی حدیث پیش کرتا ہوں, صحابہ کرام کی مجلس قائم تھی, صحابہ سے کسی صحابی نے عرض کی نبی اکرم سے, عجیب عجیب سوال کیا, کیا ٹیسٹ تھا, عجیب سوال, میں نے درخت سوال کر دیا, بڑا اونچا سوال تھا. کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بندوں میں سب سے افضل کون ہے؟ واہ, بندوں میں سب سے افضل کون ہے, اور روز قیامت میں اللہ کے نزدیک, روز قیامت میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہوگا؟ کتنا بلند وازا سوال تھا, سبحان اللہ. افضل اور اللہ کے نزدیک, یا اس وقت مل کے روز قیامت میں سب سے بہتر انسان کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے صحابی کو خور سے دیا کہ واہ, خوب سوال کیا اس نے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی تغیر نہیں کرتے تھے کسی جواب پر, مختصر مختصر جواب دیتا اور پورا دین اس میں بند ہوتا تھا, مختصر پورا دین اس میں بند. اب اس سوال کو ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے کہاں کا ہے, واقعی ہمارے لیے کیا گیا ہے کہ ہم سب سے افضل بھی ہو جائیں اور سب سے بہتر بھی ہو جائیں حضرت احمد میں, تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ اگر یہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کتنا بڑا سوال ہے, اس کا جواب جو آئے گا سوچیں اس پر جواب پر, کیونکہ جو جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے وہ تو اسی قیمت کا ہوگا, اسی ویلیو کا ہوگا, بالکل وہی چیز ملے گی, وہ انسان افضل بھی ہوگا اور قیامت میں سب سے بہتر بھی ہوگا, دو ٹائٹل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, اس کا جواب فرما دیا, اللہ اکبر, کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ کا ذکر جو کثرت سے کریں گے مرد ہو یا عورت, اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے. نمبر دو, روز قیامت میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسانوں کے اندر انسان ہو یا عورت ہوگی جو اللہ کا ذکر کرے گی. تو اب یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں الحمدللہ کس طریقے سے سیکوینس سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں, کہ پہلا ہم نے قدم دی اللہ کو, اللہ کے خاطر قربانی دی تھوڑی سی, اللہ نے اس پہ انعام دیا, ہم نے تھوڑی دیر کے اللہ کو وقت دیا, اللہ نے حج کا انعام عطا فرمایا, ذکر کی مجلس میں بیٹھ گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا کہ اگر تم یہ کثرت سے کرتے رہے اور یہی معمول رکھا, آتے رہے اللہ کے ذکر میں بیٹھتے رہے, تو اس کا نام یہ ہوگا کہ تم افضل بھی ہوگے اور اللہ کے نزدیک بہترین بھی ہوگے. ان سب چیزوں کو آپ دیکھیے اس میں کیا ہوا, سب کا تعلق یہ ہے کہ جب ہم نے छोटी सी चीज भी अल्लाह के नाम पर कर दी, अल्लाह के लिए कर दी, अल्लाह ने फौरन उसका हमें अजर अता फरमा दिया, फौरन अजर अता फरमा दिया। चाहिए यह दोस्तों कि जिंदगी के कोई लम्हा भी ऐसा ना हो, हमारा एक लम्हा भी ऐसा ना हो जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ ना हो, कोई लम्हा ऐसा खाली ना छोड़े इंसान, कोई लम्हा। सारा लुब लबाब मेरी गुफ्तगू का अर्ज करने का यही है कि क्योंकि इस दुनिया के अंदर इंसान जो है सुस्त हो जाता है, असलियत को भूल जाता है परेशानियों में, मसरूफियात में, हर चीज़ सोना बन जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इंसान को पैदा किया है और उसके साथ ईमान दिया है तो बहुत कीमती चीज़ है। कदमों पर इसने अल्लाह पाक ने इतना नाम रख दिया, बस एक मुसरफ इंसान बना ले, एक कानून बना ले अपनी ज़िंदगी का कि हर चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, हर चीज़ को अल्लाह की तरफ मंसूब करना कि या अल्लाह तेरे लिए है, मैं ना करता सिर्फ तेरे लिए है, तेरी खातिर मैं कर रहा हूँ, हर चीज़ वही इंसान की इबादत बन जाती है। वरना तो ये देखो मस्जिद है, हर चीज़ तफरी बन सकती है, बेकार बन सकती है, ज़ाया हो सकती है, ज़ाया हो रही है नहीं होती है इंसान की, यही चीज़ जो है यही कदम अगर इस तरफ ना आए तो सारी ज़िंदगी ज़ाया गई उसको, वो तो समझा ही नहीं इस कदम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एक दफ़ा तशरीफ लाए, ये मसाजिद जहाँ भी इंसान ना समझे, पेशे के मस्जिद में बैठा हो या किसी जगह हो, तो आपने देखा कि कुछ लोग हैं मस्जिद के अंदर हंस रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लाह के घर के अंदर। यानी जब इंसान ज़ाया करता है किसी चीज़ को तो हर चीज़ को ज़ाया कर लेता है, जब एहसास नहीं होता ना किसी की कीमत क्या है, इसकी वक़्त क्या है, हमें एहसास नहीं ना हमारी आँखों की क्या कीमत है, हाथ की क्या कीमत है, ज़बान की क्या कीमत है, उस जुजुस्ती है इनकी क्या कीमत है, हमारा तो दुनिया तक महदूद है इस चीज़ को, ये तो हर चीज़ बड़ा है कीमती खजाना है, आखिरत का खजाना है। तो ये अल्लाह का घर कितनी बड़ी चीज़ है भाई, कितनी बड़ी चीज़ है। तो वहाँ जो थे लोग, तो उस ज़माने की बात है, तो आज तो ये तो बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल मामूली चीज़ है, मस्जिद के अंदर आप देख लें जहाँ मस्जिद ख़त्म हुई टोलियाँ बन जाती, इंसान बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अल्लाह का घर ही नहीं आता, चेंज होती सारी क्या होता है उसके ख्याल आप ये देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो एक दिन आप रुक गए मस्जिद में, और जिस तरह आपने मुखातिब हुए ये आपका अंदाज जो था बहुत ही जलाली रंग का अंदाज, जिस इस अंदाज से आप कुछ चीज़ फरमाते थे, रुक कर आपने फरमाया कि लोगों कसम उस जात की जिसके हाथ में कब से कुदरत में मेरी जान है, इस कसम इस तरीके से अंदाज फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए जो मैं जानता हूं तुम जान लो, तो याद रखो तुम हंसना भूल जाओ और रोना तुम्हारा बंद ही ना हो, हकीकत ही है तुम्हारी। और वो क्या चीज़ है जो तुम भूले हुए, मौत, अल्लाह के नबी ने फरमाया मौत, मरने का वक्त, मरने के बाद होने का वक्त, हशर का वक्त, क़यामत का वक्त, सजाओं का वक्त, अल्लाह के सामने पेश होने का वक्त, किसी वक्त इंसान को याद नहीं। जब भी तो हम मज़े कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एहसास ही कुछ नहीं, मस्जिद का एहसास है, तो इस वक्त इंसान ये भूल जाता है कि हमारी कीमत क्या है, हमारा हासिल क्या है। हर वक्त इंसान को याद होना चाहिए, हर वक्त इस चीज़ का इस्तिखार करें, हर वक्त अपने जहन के अंदर बना के रखें सुबह से लेकर शाम तक कि कोई लम्हा भी हमारा जो है खाली नहीं होना चाहिए, हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू इंसान का रहना चाहिए। ठीक है दुनिया में काम करें, नौकरी करें, काज करें, ठीक है लगे रहें, लेकिन इस तरीके से अंदाज के साथ हो कि ताल्लुक अपने रब से जुड़ा रहे इंसान का, हर चीज़ लिल्लाह अल्लाह के साथ मुनसिब इंसान का, बहुत कीमती बन जाता है फिर इंसान दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। याद रखें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तौफीक नसीब फरमाई कि जिक्र की मजलिस जैसे मैंने नर्स किया आपको, बहुत कीमती चीज़ है, इसमें जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त किसको दे रहे हैं आप, अल्लाह को दे रहे हैं, अल्लाह को जब कोई चीज़ दी जाती है तो उसका बदल अल्लाह बहुत ही देता है, अब बेहिसाब देता है, अपने हिसाब से देता है उस शख्स को कि देखो कितने छोड़ के आए, इसका दिल भी नहीं कर रहा था, उस वक्त ज़्यादा देता है कि जब किसी इंसान का दिल भी ना करे मस्ती में हो, दिल भी नहीं चाहे उसके जाने को मस्जिद में, जाए ना जाना, जाना भी ना चाहे वो बिल्कुल भी, उसको शौक ही ना हो उसके अंदर, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ के चलो पहुंच ही जाते हैं, उस पर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, उसको ज्यादा इनाम देते हैं। किसने बहुत कोशिश की इस शख्स ने, एक तो हाई आदमी चलो भी आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वो तो एक यूज टू हो गए आदमी आ रहा है, उसको तो इनाम मिल रहा है, लेकिन उसकी ज्यादा कदर करते हैं, फिर से कहते हैं उसको आगे बुलाओ, उसको आगे बिठाओ, सबसे पहले इसको इनाम दो कि जो इस तरीके से है, ये मेरा पहला मेहमान है, इसकी इज्जत एहतराम करो। उसकी अल्लाह ताला बहुत एहतराम करते हैं ऐसे शख्स का, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे शख्स को तो चाहिए जब पहली दफा मजलिस में आए और मजलिस का रंग देखे कि मैं जिक्र में आया, ये अनामात, ये बातें इसलिए बताई जाती हैं, हदीसों को इसलिए दोहराया जाता है, कई दफा सुनेंगे आप नहीं हदीसें, इसलिए दोहराया जाता है कि इंसान के अंदर तकवीत पैदा हो जाए कि मैं तो बहुत कुछ लेके जा रहा हूं, हकीकत में अगर आज मैं ना आता तो मुझे मिलता क्या, थोड़ा सा नफ्स का ख्वाहिशात पूरी करता, लेकिन कितनी चीजें मैं लेकर जा रहा हूं। अब आप ये देख रहे हैं अगर कोई इंसान ना आता इसमें कितने इनाम मिले, चलने का इनाम अल्लाह ने कितना दिया, हज का इनाम, ये तो आप सोचें जब अमलनामे में रखा जाएगा ना पूरा हज और मकबूल हज, उसका सवाब जब रखा जाएगा तो हैरान हो जाएगा, कहता है तुम्हें तो इतफाक से किया था अल्लाह ताला, और तो सच बोलेगा ना, कहता तेरा इतफाक था मेरी रहमत बड़ी थी, तेरा तो इतफाक था लेकिन मेरी रहमत बहुत बड़ी थी, मैंने उसको भी कबूल किया कि तू पहुंच गया। तो मेरे भाई ये जो जिंदगी इंसान की है, मुजाहिदे की जिंदगी है, इस पर इंसान को थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए इन बातों से कि फ़ायदेमंद कौन सी चीज़ है, नुकसानदेह हमारी कौन सी चीज़ है। इसीलिए यह है जो उलमा कराम हमें बताते हैं, समझाते हैं चीज़ें कि भाई इनको पता लग जाए कि फ़ायदेमंद चीज़ क्या है और नुकसानदेह चीज़ क्या है, ताकि फिर अपने बैलेंस को कायम कर सकें और समझ सकें कि भाई हकीकी फ़ायदा इसमें हमें नुकसान नहीं है। तो इंशाल्लाह आज के बाद जुमेरात पक्की, इंशाल्लाह ज़ोर से बोलें सब लोग, तो जिक्र में आना है इंशाल्लाह, बेशक नफ्स कितना रोगे लेकिन तीन हदीसों को याद कर लेना कि मैं मस्जिद में चलूँगा कदम का सवाब, मजलिस में बैठूंगा हज का सवाब, सुभान अल्लाह वापिस जाऊंगा फिर वही सवाब, और उसके साथ जो है जिक्र का सवाब तो मैंने बताया कि अफजल होने का टाइटल अल्लाह की खुशनुदी और मोहब्बत और पसंद का टाइटल मुझे नसीब हो जाएगा, और क्या चाहिए इसके मुकाबले में, सारी दुनिया भी मिल जाए तो कुछ भी नहीं दोस्तों। इंशाल्लाह अगले जुमेरात पे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।